सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शिशुमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की समवेद भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ऑल ग्लोरी स्टे संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी स्टे संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी स्टे संबल डिवोटीज All glories, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासम् ततोजयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिरवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का अध्याय पहला, इनका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार, और श्लोक संख्या नंबर 17। कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए। भूमिर्दृप्त नृपाव्याजा भूमिर्दृप्त नृपाव्याजा दैत्यानीक सतायुतै दैत्यानीक सतायुतै आक्रांत भूरी भारेण आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मणां शरणं ययु ब्रह्मणां शरणं ययु भूमिर्दृप्त नृपायाज भूमिर्दृप्त नृपाव्याज दैत्यानीक सतायुतै दैत्यानीक सतायुतै आक्रांत भूरि भारे आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मणां शरणं ययु ब्रह्मणां शरणं ययु भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक सतायुतै आक्रांत भूरि भारेण ब्राह्मणां शरणं ययु शब्दातीत प्रकार है। भूमि पृथ्वी माता, द्रुत गर्वित, नृप व्याज राजाओं का, स्वांग भरते हुए अथवा राजाओं में साक्षात परम शक्ति, दैत्य असुरों की, अनेक सैनिकों की सेना, शत आयुतय सैकड़ों हजारों में असंख्या आक्रांता बोचिल होकर भूरी भारेन व्यर्थ की सेना के बोझ से ब्रह्मणम ब्रह्मा के पास शरणम शरण खोजने ययो गई। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमते श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बौछिल हो उठी और वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तात्पर्य, जब भी संसार अनावश्य से सैनिक व्यवस्था से छिन्न हो उठता है और जब भी विविध असुरी राजाओं का शासन होता है तो इस बोझ के कारण भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युधानव धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का हानि होता है और अधर्म का प्रबल होता है तब तब मैं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस धरातल में निवासी नास्तिक तथा ईश्वरवादी हीन हो जाते हैं तो वे कुकुरों सुकुरों की स्थिति के तरह रहना शुरू करते हैं और उनका एक ही कार्य रहता है और वो यह है परस्पर भोकना। यही धर्म ज्ञानी अर्थात जीवन लक्ष्य के विचलन है। मनुष्य जीवन को कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु जब लोग ईश्वर विहीन हो जाते हैं और अध्यक्ष या राजा अपनी सैन्य शक्ति पर अनावश्यक गर्व करने लगते हैं तो उसका कार्य युद्ध करना तथा अपने विभिन्न राजाओं की सेना शक्ति को बढ़ाना रहता है। इसीलिए आजकल ऐसे प्रतीत होता है कि हर राजा तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। ऐसी तैयारी व्यर्थ है और इससे राज्य के प्रधानों का मिथ्य अहंकार प्रतिबंधित होता है। प्रमुख शासक का असली कार्य तो जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चतुर्वर्णया सृष्टम गुणकर्मा विभागस, भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में। नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक वृत्ति परक कार्यों में लगाए जिससे वे कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति कर सके। किंतु वो यह रहे वो किंतु हो यह रहे हैं कि चोर तथा उच्चके राक्षस के वेश में मतदान प्रतीत है कि व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे येन केन प्रकारेण सभा में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण जो कि ईश्वर भावनामृत से विहीन थे राज्य के प्रधान बन गए थे और अब फिर से वैसा ही हो रहा है। संसार के विभिन्न राज्य सेना शक्ति को व्यवस्थित करने में लोग लगे हुए हैं। कभी कभी तो वे इस कार्य के लिए सरकार की आय का 75% खर्च कर देते हैं। किंतु लोगों की कठिन कमाई को भी इस तरह क्यों फुका जाए। वर्तमान विश्व प्रतिष्ठित को देखते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं। यह स्वाभाविक है कि क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बिना विश्व में शांति और सुख स्थापित नहीं हो सकता। होम ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाखियां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामीयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सार्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पत्रुभ्यस्ति कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार भूमि देवी स्वयं नाना प्रकार के अत्याचार पापों की बोझ के भार से परेशान होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाती है इसका कुछ उपाय खोजने के लिए। तो यही यहाँ पर वर्णन किया गया है। भूरी भूमि दृत्यत द्रिपा प्याजा दैत्येनि कशात। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार भूमि देवी स्वयं पाप के बोझ के कारण वो जाती है ब्रह्मा जी के पास। तो पाप के बोझ किस कारण से है तो बताते हैं दृप्त जो राजा लोगों की जो गर्वित विचार के कारण अहंकार के कारण राजा लोग अपने शक्तियों को दुरुपयोग करने के कारण संसार में पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर पृथ्वी देवी ऐसे राजाओं से परेशान हो गई हैं, जो कि जिन राजाओं की गिनती गिने जाए तो असंख्य है, जिनकी गिनती हजारों हजारों की संख्याओं में है। अब यहां पर श्ल प्रभुपाद शब्दार्थ में लिखते हैं, अनगिनत ऐसे राजाओं का भार पृथ्वी देवी धो रही थी। तो ऐसी दुखी अवस्था में पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, क्योंकि जो राजा जो होते हैं वो समाज के मुख्य दिशा दिखाने वाले पद पर बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत ही सारी प्रजा निर्भर रहती है। तो जैसे राजा का विचार होगा वैसा ही विचार प्रजाओं पर पड़ता है। तो ऐसे कहा गया है कि अगर प्रजा पाप करता है तो उस प्रजा के 50% जो है वो पाप राजा को पड़ता है, क्योंकि राजा उसके उत्तरदायित्व अधिकारी होते हैं जो कि उनको संरक्षण करे और उन्हें सही दिशा की ओर मोड़े, ये राजा का कर्तव्य होता है। मगर आज के तारीख में ऐसे राजा का खोज करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आज के तारीख में जितने भी प्रजाएं हैं वो सभी लोग दूषित होने के कारण राजा भी वैसे ही बन रहा है। इसलिए श्ल प्रभुपाद कहते हैं कि आज का जो डेमोक्रेसी जो है, वास्तविक में डेमोक्रेसी नहीं है, यह डिमन क्रेजी। डिमन क्रेजी यानी कि वो जो असुरों का विचार वाले व्यक्ति हैं। इसलिए जितने भी प्रजाएं हैं ये सारे प्रजा सब गधे के समान हैं, और सारे गधे मिलकर बड़े गधे को चुनते हैं। ऐसे प्रभुपाद अपने व्याख्या करते हैं कि यह भौतिक संसार की अवस्था है, यह स्थिति है। चाणक्य पंडित बताते हैं, अश्वयान जायते वत्सो मिथ्या वदति भूपति वस्त्रम जलाग्नि नाम धक्तम यथा राजा तथा प्रजा। बताते हैं कि इसके ऊपर एक कहानी बताते हुए इस श्लोक को समझाते हैं कि एक बार एक राजा था, उस राजा के निकट में एक मंत्री था, उस मंत्री के प्रति उस राजा का बड़ा लगाव था, लेकिन उस मंत्री के प्रति लगाव को देखकर अन्य जितने मिनिस्टर थे उन लोगों के हृदय में थोड़ा ईर्ष्या भावना आ गई, और सभी लोग सोचने लगे कि ये राजा उतना महत्व क्यों दे रहे, हमें क्यों नहीं। तो उन्होंने उनके उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जो कि एक घोड़ी जो कि बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो बच्चे को जन्म तो दे दी। तो राजा ने मंत्री को पूछा, मंत्री घोड़ी ने किसको जन्म दी? तो इन्होंने कहा, घोड़ी तो घोड़े को ही जन्म दी। तो उन्होंने कह दिया। अब ये जितने मंत्रीगण थे ये सभी लोग मिलकर बाकी जितने उनके असिस्टेंट मंत्रियां, ये सारे मंत्री लोग मिलकर उस घोड़ी के बच्चे को हटाकर गाय के बछड़े को रख दिया, और सारे के सारे असिस्टेंट लोग आके कहने लगे, देखिए देखिए मंत्री झूठ बोलता है, कहता है कि घोड़ी को घोड़ा हुआ लेकिन यहां पर तो घोड़ी को गाय का बछड़ा हुआ है, और आप इसके ऊपर कुछ तो कार्रवाई करिए। तो राजा बोला, हाँ इस तो मुझे मेरे साथ छल किया है, मैं इसे निकाल दूंगा। उन्होंने राजा ने उसे धक्के मार के निकाल दिया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर तुम्हें ये पूरा राज्य को छोड़कर चले जाना है। तो बोला ठीक है। एक हफ्ता बीत गया लेकिन वो गया ही नहीं। तो उसको बुलाया गया, क्यों नहीं गए? तो इन्होंने कहा, मैं बहुत परेशान में पड़ चुका हूं, मेरा घर पूरा जल के राख हो गया है। बोला ऐसे कैसे, क्या हुआ? तो बोले ऐसा हुआ कि एक बाल्टी के अंदर कपड़े को मैंने डुबो के रखा, और एक बत्ती जल रहा था, और वो बत्ती जलते हुए वो बत्ती एना केना प्रकारे उसमें गिर पड़ा, और जब उसमें गिर पड़ा तो उसी पानी के अंदर वो कपड़े को आग लग गया, और जिस कारण से पूरा बाल्टी जल गया, और जिससे पूरा मकान मेरा जल के राख हो गया। राजा बोला क्या बकवास बोल रहा है, पानी के अंदर कपड़े को आग लगेगा? तो इन्होंने कहा अश्वयं जायते वत्सो, जब एक घोड़ी एक गाय के बछड़े को जन्म दे सकता है, वस्त्रम जलाग्निनाम धत्तम, तो क्यों नहीं, जो कि कपड़ा पानी के अंदर भिगाया हुआ कपड़ा वो क्यों नहीं जल सकता है। ये था राजा तथा प्रजा, क्योंकि तुम्हारे प्रजा वैसे इसलिए तुम्हारी भी भाव भी वैसे ही है। इसलिए कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, थके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक बार पूरे राज्य में एक बार राजा ने एक विचार किया कि सभी कुछ एक हो जाना चाहिए, सबको समदृष्टि, सबका समानता मूल्य होना चाहिए, कोई ऊंचा नीचा नहीं। तो क्या किया जाए? तो कहने लगे केवल एक ही टका में सब्जी होना चाहिए, एक ही टका में खाजा, खाजा यानी कि स्वीट, एक ही टका में होना चाहिए सब एक। तो शिष्य सुन के तो बड़ा खुश हो गया। गुरु ने कहा तुरंत हमें यहां से जगह खाली करना है। तो गुरु को मस्का लगाने लगे, नहीं गुरुजी देखिए बड़ा अच्छा मौका है, जितना मांगता उतना स्वीट खा सकते हैं, अभी अभी खूब खा जाके। बोला नहीं नहीं मूर्ख मत बन, यहां से चलो, मेरी बात मानो नहीं तो पछताओगे। बोला नहीं गुरुजी आप चलिए, मैं पीछे से बाद में आऊंगा खूब खा पी के। तो गुरुजी का बात नहीं सुना, गुरुजी चले गए। अब ये यहीं पर ही रहा। अब ये शिष्य ने वहां पर थके शेर खाजा बहुत खाया, इतना खाया इतना खाया। और हुआ क्या कि वहीं पर ही अचानक एक ऐसा दृश्य हुआ, एक ऐसी घटना घटी कि वहां पर एक उसी राज्य में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे लाया गया दरबार में, तो राजा ने कहा इसे फांसी दे दिया जाए। तो फांसी दे देने के ऑर्डर दे दिया। अब फांसी का फंदा जब उसके गले में डाला तो फांसी का फंदा फिसल जाता था, क्योंकि गला बड़ा पतला था तो बैठता ही नहीं था। तो इन्होंने कहा, मंत्री ने कहा क्या करे राजा जी, इसका गला इसमें फिट नहीं होता है और ये बड़ा पतला है। तो इन्होंने कहा राजा ने, जो कोई फांसी के फंदे के माप का बराबर है उसे टंगा दो। अब ये जो शिष्य था बहुत खाजा खा खा के मोटा हो गया था, अब डूबते डूबते इसी को पकड़ा, चलो फांसी के फंदे में चढ़ रहा है। अरे मैंने कुछ किया नहीं, नहीं राजा का ऑर्डर है, जो ये फांसी के फंदे में फिट होता है उसे चढ़ा दो। अब ये बेचारा इतना हताश हो गया, मैं गुरु का वाक्य बात नहीं सुना, पछताने लगा कैसे, तो गुरु को संदेश भेजा। तो गुरु जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था, ठीक है ठहरो मैं आके कुछ करता हूं। तो गुरु आए, तो जैसे ही उनको फांसी का फंदा चढ़ाने वाले तो गुरु जी ने कहा ठहरो 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 इसे रोक दिया जाए। राजा देख के आश्चर्य हो गया, क्या हो रहा है, एक संत साधु आकर इस प्रकार कह रहा है। और उन्होंने अपने शिष्य को धक्के मार के हटाया और वो फांसी का फंदा खुद के गले में डाला, मुझे चढ़ाओ मुझे जल्दी चढ़ाओ। तो राजा कहने लगा क्यों ये क्या हो रहा है, मुझे पहले बताओ किस लिए तुम ऐसे कर रहे हो। बोला ये समय बड़ा उचित है, अब इस समय पर जो कोई फांसी के फंदे में चढ़ा वो स्वर्ग जाएगा। तो राजा बोला ऐसा, चलो बाजू हटो मैं चढ़ता हूं बस। तो राजा के दब्बर लग गया उसे। तो ऐसे इसलिए कहा गया है जैसे प्रजा जैसे राजा वैसे प्रजा। तो यह है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ऐसे सारे राजाओं से परेशान होकर हताश होकर पृथ्वी देवी बड़ी परेशान हो गई और बड़ी दुखी अवस्था में वो जाती है। ब्रह्मा जी के पास। तो यहां पर पृथ्वी देवी, भूमि देवी जो है ब्रह्मा के पास उपाय के लिए जाती हैं। हम देखते हैं कई असुर लोग भी अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु, उन्होंने ब्रह्मा जी का शरण लिया। लेकिन हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों की भावनाओं के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी देवी ने शरण नहीं लिया, क्योंकि पृथ्वी देवी जानती थी कि ब्रह्मा जी जो है कृष्ण के बड़े भक्त हैं और भक्तों के शरण लेने मात्र से मेरी सारी समस्या सुलझ जाएगी। और ऐसी भावना से पृथ्वी देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास। इसलिए शांडिल्य उपनिषद में कहा गया है कि कोई अगर भगवान की अच्युत की सेवा करते हैं तो हो सकता है कि उसका उद्धार ना हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो सकता है, चलो मान लिया जाए नहीं हुआ। लेकिन जो कोई कृष्ण के भक्त का अगर सेवा करता है या भक्त का भक्त बनता है, उसका कोई डाउट नहीं है, उसका कोई संशय नहीं है कि उसका उद्धार नहीं होगा, वो अपनी सारी समस्याओं से तर जाएगा। और ऐसे यहां पर पृथ्वी देवी अब जाती है ब्रह्मा जी के पास उपाय लेने के लिए कि मेरा यहां पर मैं इस समस्याओं में पड़ चुकी हूँ, मेरे ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार बढ़ चुके हैं जिसके कारण मैं इस बोझ को सह नहीं पा रही हूँ। तो जब हमारे शरीर में पाप के बोझ जब बढ़ जाते हैं तो वो पाप के बोझ के कारण व्यक्ति कोई भी आध्यात्मिक कार्यकलाप करने के लिए उनकी रुचि नहीं होती है। शरीर भारी भारी लगने के कारण वो किसी चीज में रुचि नहीं ले पाता है। जैसे दामोदर लीलाओं में जहां पर वर्णन आता है कि यशोदा मैया कृष्ण के पीछे भाग रही थी, अब कृष्ण को ने अधोक्षदे, अधोक्षदे यानी कि जो सारे इंद्रियों से परे जिसको कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन उसी कृष्ण को बड़े आसानी से यशोदा मैया ने पकड़ लिया। अब कृष्ण के पीछे भागने वाला और एक था, कृष्ण लीला में जहां पर वर्णन आता है और एक कृष्ण के पीछे भागा था और वो था काल यवन। काल यवन भी कृष्ण के पीछे भागा था और पूरा मेहनत लगा दिया था। अब ये काल यवन कौन है? ये शिव जी के बड़े सिद्ध भक्त हैं और उन्होंने काफी सिद्धि अर्जित किया है शिव जी का आराधना करते हुए, और बड़े फुर्तीला थे काल यवन। लेकिन कृष्ण ने उनको कहा आ जाओ मैदान में। जैसे वो मैदान में उतरे कृष्ण चलने लगे, ये भागने लगे, और ये भाग रहे कृष्ण चल रहे, और पहाड़ों पे चढ़ रहे कृष्ण और ये पीछे पीछे भागता हुआ जा रहा, और कहने लगे रण छोर, रणभूमि में बुलाकर रण चोरी करके भाग रहा है। तो कृष्ण कहने लगे बहुत नाम सुना मैंने, माखन चोर, वस्त्र चोर, रण चोर, जरा मधुर नाम लग रहा है। तो बड़ा क्रोध आया, ये भाग रहा है लेकिन कृष्ण को नहीं पकड़ पाया, मगर यशोदा मैया कृष्ण को बड़े आसानी से पकड़ लिया। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे क्यों, क्यों काल यवन कृष्ण को नहीं पकड़ पाए? क्योंकि काल यवन ने अपने जीवन में भरपूर पाप कर लिया था, जिस पाप के बोझ के कारण काल यवन भाग नहीं पाता था। और यहां पर यशोदा मैया को अनघ करके संबोधित किया है, अनघ यानी कि निष्पाप, जिसके अंदर रंच मात्र भी पाप नहीं है। अब बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए, एक्सटर्नली अगर देखा जाए, यशोदा मैया काफी वजनदार दिख रही थी और यहां पर काल यवन बाहरी दृष्टिकोण से बड़े फुर्तीला दिख रहा था, लेकिन जब कृष्ण को पकड़ने की बारी आई तो काल यवन हार गया और यशोदा मैया बड़े आसानी से कृष्ण को पकड़ ली। अब यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए ऐसे भी नहीं कि यशोदा मैया ने सोचा कि चलो मुझे दीपावली में दामोदर लीला करने के लिए कृष्ण को पकड़ना होगा तो पहले से मैं जॉगिंग का प्रैक्टिस करूं, ऐसा भी नहीं था, मगर उन्हें आसानी से पकड़ ली यशोदा मैया ने। किस कारण से? क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से यशोदा मैया अनघ थी, निष्पाप थी, और यहां पर आंतरिक दृष्टिकोण से काल यवन भरपूर पाप से भरा हुआ था। तो जब पाप का बोझ हम पर जब रहता है तो कृष्ण भावनामृत हमारे लिए बड़ा हैवी हो जाता है, बहुत भारी लगने लगता है। तो वैसे ही माला अगर करने जाए एक एक मणि, फिर उसे ऐसे लगेगा कि जैसे कुएं से पानी निकाल रहे हैं, एक एक मणि उसे हैवी लगने लगता है। खास करके रात का समय हो गया है, कुछ राउंड और बाकी है और बगल में बिस्तर भी रहा है, उस समय तो ज्यादा ही एक एक मणि जो है फिर फांसी का फंदा लगने लगता है। ओहो कैसे आ गया इसमें। तो वो जो भारीपन लगने का मुख्य कारण क्या है? पाप के बोझ। जैसे यहीं पर ही हमारे जब रमय प्राण प्रभु जब टेंपल कमांडर थे, उस समय वो मंदिर बस का एक बड़ा संकीर्तन बस का अंदर का जो बड़ा अल्टर का जो ढांचा था, वो ढांचे को बाहर निकाल के कलर कर सूख गया था, उसे वापस चढ़ाना था। तो उन्होंने कहा इसे चढ़ाना है, तो मैंने कहा ये तो अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता है, कम से कम चार पांच लोग चाहिए। तो और भी ब्रह्मचारी खड़े थे, तो सबको बुलाया, लेकिन सबको बुलाया उसमें चंद्रशेखर प्रभु और हरिनाम प्रभु ने आसानी से उठा के रख दिए। तो मैंने कहा अरे वाह क्या बलशाली है, चंद्रशेखर को बोला। तो चंद्रशेखर प्रभु कहने लगे हाँ प्रभु ये सब उड़ जाता है, लेकिन सुबह सुबह जप माला नहीं उड़ता। तो ये भले ही व्यक्ति कितना भी बाहरी दृष्टिकोण से कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन 100 ग्राम या 200 ग्राम का जपमाला उठाने बोले जाए तो बहुत भारी पड़ता है। तो उठाने मात्र से ही आ जाता है निद्रा देवी की कृपा। वो जो भारीपन लगने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि काल यवन की तरह हमारा भी जीवन हो चुका है। इसीलिए वो व्यक्ति का माला एकदम जल्दी से होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्पाप है या जो अनागा है, वो बड़े रफ्तार भाग सकता है कृष्ण को पकड़ने। इसलिए जो पाप जो है, ये पाप के बोझ के कारण पृथ्वी देवी बड़ी भारी हो गई, जिस भारपन को लेकर अब पृथ्वी देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी इसी सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व नहीं करते। कोई समस्या आ गई तो ठीक है मैं वन मैन शो करूंगा, सब मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं। उन्होंने इसी प्रस्ताव को शिव जी के पास, अन्य देवी देवताओं के पास रख कर वो गए नारायण के पास, जो कि सारे समस्याओं का हल निकालने वाले मुख्य जो जड़ है वो है नारायण। और ऐसे समस्याओं को लेकर नारायण के पास जाते हैं, और वही नारायण हर युग में, जैसे यहां पर कहा गया है ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं इस धरातल में, और प्रकट होकर क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो पृथ्वी देवी की रक्षा करने के लिए यहां पर भगवान अब प्रकट होंगे, जिसके विषय में चर्चा आएगी कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। क्योंकि दशम स्कंद जो है इसके अंदर आश्रय तत्व के विषय में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त को आश्रय प्रदान करते। तो वो जो मुख्य जो है भक्तों की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान एक बार अकबर बीरबल के बीच में जब वार्ता हो रहा था, उस समय अकबर बीरबल को कहने लगे कि बीरबल तुम्हारे भगवान को और कुछ काम धंधा नहीं है क्या, बार बार आते रहते हैं? तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके विषय में बताऊंगा। और उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन एक आया को बुलाकर उनको कुछ पैसे देकर उन्होंने कहा कि ये मोम से बना हुआ एक पुतला है, इस पुतले को सीधे राज दरबार में लेकर आना और राजा के सामने भरी सभा में बाल्टी के अंदर डुबो देना। बोला ठीक है, और ऐसे ही किया। दूसरे दिन उस बालक को लेकर आया और वो बालक हूबहूब अकबर के पुत्र के समान दिखाई पड़ रहा था और उन्होंने लाके उस बाल्टी में डुबो दिया तो अकबर देखकर चकित हो गए और अपने सारे प्रजाओं के सामने, जितने भी उनके मिनिस्टर लोग सब सामने बैठे थे, वैसी सभा में बैठे हुए भी राजा स्वयं भाग कर गए उस बाल्टी से, उस पुतला जो बालक था उसको बाहर निकालने के लिए। जब निकाला तो देखा पुतला ये तो मेरा पुत्र नहीं है, तो बड़े फटकारे उस आया को। तो इन्होंने कहा मैं क्या करूं, बीरबल ने मुझे बोला। तो बोला बीरबल तुमने क्यों किया ऐसे, तो बीरबल ने कहा ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो बोले कौन सा, कि भगवान यहाँ पर क्यों आते, उसको और कुछ काम नहीं है क्या, वो अपने सेवक को नहीं भेज सकते क्या? नहीं, भगवान स्वयं आते हैं। जैसे कि आप सिंहासन पर बैठे थे, जब आपका पुत्र जब डूब रहा था, जब आपको ऐसे प्रतीत, तो आपके सामने सारे मिनिस्टर थे, मैं भी था, लेकिन आपने मुझे नहीं बोला, आप इतने व्यस्त थे तो भी आप दौड़ कर आए। ठीक इसी तरह भगवान के भक्त जब संकट में होते हैं तो भगवान किसी को भेजते नहीं, खुद ही आ जाते हैं। तो वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धरातल पर प्रकट होते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध करते हैं, उनको दंडित करके, और जो असुर है उनको मारकर उद्धार कर देते हैं। तो एक ही श्लोक में वो कई प्रकार के कार्य कर लेते हैं, एक ही अवतार में ही। जैसे भगवान, जैसे कि इंद्र जो कि पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए थे भक्ति में, तो भगवान ने उनके अहंकार को देखा। जब इंद्र भरपूर वर्षा बरसा रहे थे गोवर्धन वृंदावन में, तब उसी समय भगवान कृष्ण ने देखा इंद्र के अंदर के अहंकार को। और बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तन्माच नहीं सद्भाव युक्ता नाम सूराणाम ईश विस्मय मतो सताम मान भंग परस्मायो उपकल्पते। नहीं सत भाव युक्ता नाम, हालांकि ये देवता है, भगवान ने देखा इंद्र अपने राज्य सिंहासन पर बैठा है, तो राज्य सिंहासन पर बैठा है, देवता है, सुर है, तो इसे सत्वगुण में रहना चाहिए। मगर सुराणा विस्मया, उन्होंने अपने कर्तव्य को भूल गया अहंकार के कारण, तो वो अहंकार से दूषित हो चुका है। मतो सता मान भंग, मुझे इन्हें शुद्ध करने के लिए कुछ कार्य करना होगा, इनके मान भंग करने के लिए मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। परस्परम परस्मायो उपकल्पते, जब इसका मान भंग होगा तब ये शांति को प्राप्त कर सकता है। और भगवान ने एक नजर ऊपर देखा इंद्र की ओर और दूसरा नजर अपने ब्रजवासियों को देखा, ब्रजवासियों की क्या स्थिति थी। तस्मान मत चरणम गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वथम योगेना स अयम मे व्रता आईता। वो कहने देखने लगे, तस्मान मत चरणम गोष्ठम, ये जितने भी गोप लोग हैं, गोपिया है, सारे ब्रजवासी, मत शरणम मेरे शरण को प्राप्त किए, मन नाथम मत परिग्रहम एकमात्र मैं ही उनका नाथ हूं और अपने परिवार की तरह मुझसे प्रेम करते हैं, तो मुझे गोपाय स्वतः योगेना, मुझे इनकी रक्षा करने के लिए कोई अद्भुत कार्य करना होगा। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और उन्होंने तुरंत ही गोवर्धन को उठा लिया। तो आचार्यगण कहते हैं गोवर्धन को उठाया, वास्तविक में क्या उठाया था, उन्होंने इंद्र के गर्भ को उठा दिया था।
और इंद्र के गर्व को उन्होंने नाश किया, ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र वहां पर विनम्र हो गए, शुद्ध हो गए। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा, जो सकाम भक्त है उनको शुद्ध करके और जो निष्काम है उनकी रक्षा करके, और जो असुरों के द्वारा भी भगवान रक्षा करते उनका उद्धार करके। जैसे अम्बरीश महाराज, जब अम्बरीश महाराज ने जब दुर्वासा मुनि को जब आमंत्रण किया था द्वादशी का पारण तोड़ने के लिए, कुछ क्षण बाकी था मगर देरी हो रहा था, तब इतने में पारण का समय बीता जा रहा था, दुर्वासा मुनि ने पारण तोड़ दिया और उसी समय दुर्वासा मुनि को उनके अहंकार पे ठेस पहुंचा। दुर्वासा मुनि उन्होंने बड़े क्रोधित होकर अपनी जटा से एक केश निकालकर जमीन पर अपट कर एक भयंकर असुर को पैदा किया और कहा इसे आ जाओ। अब वहां पर अम्बरीश महाराज की स्थिति क्या थी? अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर प्राकृतिष्टम वृक्ष रक्षायाम पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यम तम चक्रम कुरुधीम इव पावक। अब वहां पर अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे, तो केवल खड़े नहीं थे, साथ में स्मरण कर रहे थे। प्राकृतिष्टम वृत्य रक्षायाम, अपनी भक्त की रक्षा के लिए जिस प्रकार पहले से योजना सेट हो चुका है कि भगवान नारायण की बिना आज्ञा से चक्र छूट जाता है, भक्तों की रक्षा के लिए चक्र हाजिर हो जाते हैं, वैसे ही यहां पर इस सीन में अब चक्र प्रवेश कर दिए। पुरुषेना महात्मना, किसके? महात्मा की रक्षा के लिए, अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए तुरंत प्रवेश हो गए। ततः कृत्यम तम चक्रम, उस चक्र ने उस असुर का वध कर दिया और उसका वध कर दिया। अब सेकंड उनका टारगेट हुआ दुर्वासा मुनि। अब यहां पर दुर्वासा मुनि ने जो फेंका हुआ जो असुर था उसकी तुलना की गई है गुर्दधीम, क्रुद्धधीम, क्रुद्धधीम यानी जहरीले सर्प के समान। और भगवान के चक्र की तुलना की गई है पावक, पावक यानी अग्नि। तो यहां पर अग्नि के सामने सर्प क्या कर सकता है? सर्प केवल आवाज कर सकता है, हुस हुस करके आवाज कर सकता है, लेकिन वो जो सर्प के आवाज को सुनकर अग्नि तो थोड़ी भागेगी, अग्नि तो सर्प को पूरी तरह जला के राख कर देगी। जब जंगल में आग लगता है तो पूरे के पूरे प्राणी जल के राख हो जाते हैं, वैसा अग्नि रूपी अम्बरीश महाराज का भक्ति था। और केवल अम्बरीश महाराज की भक्ति जो कि अग्नि रूपी जैसी भक्ति के सामने ऐसे जहरीले सर्प उसको कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान के जो भक्त की रक्षा हमेशा भगवान इस प्रकार करते हैं कि ऐसे जहरीले सर्प उसके सामने आकर भी वो राख हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब हरे कृष्णा मंदिर की जब स्थापना कर रहे थे इस्कॉन झू राधा राज बिहारी का, तब उस समय श्रील प्रभुपाद ने मिस्टर एन से उन्होंने काफी डीलिंग किया, लेकिन मिस्टर एन बड़ा कपटी था, उन्होंने उनसे काफी कुछ पैसे वगैरह सब ले लिया और बाद में कहने लगा तुम जमीन छोड़ के चले जाओ। तो प्रभुपाद कहने, प्रभुपाद समझ गए तो कपटी आदमी है, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है तुम हमारा पैसा वापस दे तो हम जमीन तुम्हें दे देंगे। बोला नहीं नहीं कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ यहां से, तुम जाओ नहीं तो तुम्हें हम बहुत हैरान करेंगे। तो प्रभुपाद ने वो जमीन को छोड़े ही नहीं, सारे भक्तों को कहा वहीं पर ही संकीर्तन वगैरह चालू करो। उस संकीर्तन से अड़ोस पड़ोस वाले परेशान हो गए, उन लोग को आकर उन लोग को एकत्रित कर उन्होंने कंप्लेन। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है पैसे दे तो हम जाएंगे, लेकिन पैसे देने को ही नहीं तैयार है। और इतना ही नहीं, जब प्रभुपाद जब उस स्थान पर थे तो उस स्थान के बाद प्रभुपाद वहां से जब एक हफ्ते के बाद जब निकल गए तो प्रभुपाद को पता था बड़ा परेशान कर रहा है, तो प्रभुपाद जब न्यूजीलैंड में थे तब एक हफ्ते के बाद उनका मृत्यु हो गया हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक से, अब ब्रह्मानंद स्वामी बताते हैं कि उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर बताते हैं कि उनको वास्तविक हार्ट अटैक का सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, कि ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे किसी ने उसके हृदय को पूरी तरह क्रश कर दिया या चूर कर दिया है किसी ने अंदर। और जब ये खबर जब प्रभुपाद को मिला कि मिस्टर एन मर गया हार्ट अटैक से, प्रभुपाद कहने लगे जय हरे कृष्णा, सबको स्वीट बांटो, और हमारे जू मंदिर में भी सबको, सब भक्तों को कहो स्वीट खाने और पार्टी करने, क्योंकि मिस्टर एन, मैंने उसके लिए काफी प्रार्थना किया था भगवान से कि उनको ले लो। और वो अब ये जो सर्प रूपी मिस्टर एन तो मर गया था, लेकिन मिसिस सर्प बाकी थी। तो उसने क्या किया, उसने उस जमीन से भगाने के लिए कई गुंडों को भेजा, सब तोड़ फोड़ करने के लिए, लेकिन कोई हमारे हितेशी के कारण हम वहां पर उस स्थान पर बच गए। कुछ लोग और पार्टी आ गई, जिस पार्टी के कारण उन लोगों ने देखा कि हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ रहे, तो उनके साथ उनका काफी युद्ध हुआ और उन लोग को वहां से भगा दिया। अब ये जो महिला थी, इन्होंने देखा कि इस प्रकार तो काम नहीं हो रहा है, तो चलो कोर्ट में ही मैं स्टे ऑर्डर का मैं एप्लीकेशन दे देती हूँ, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन जो चल रहे तुरंत बंद हो जाए। तो गई थी वो कोर्ट में दर्ज करने के लिए, लेकिन फ्राइडे का टाइम था और समय बीत चुका था, संध्या हो चुकी थी, अब क्लोज डाउन हो रहा था। तो उन्होंने कहा हम आपके दर्ज को नहीं लेंगे क्योंकि समय बीत चुका है, फ्राइडे, अब कोर्ट मंडे को खुलेगा। अब उसे रख दिया गया। अब ये खबर मिल गया प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कहा केवल 2 दिन के अंदर पूरा टेम्पल खड़ा कर दो, और सारे भक्त लोग मिलकर, अन्य और भी लोग, सेवक लोग मिलकर उस मंदिर में ऐसे एकजुट होकर उन्होंने सेवा किया कि मंदिर खड़ा कर दिया। और यहाँ पर जब सोमवार को जब इस केस को पढ़ा गया तो जज ने पूछा अच्छा तो वहां पर अब क्या स्थिति है, तो कहा मंदिर तो बन चुका है। तो जज ने कहा मंदिर बन गया है तो अब कुछ नहीं कर सकते, जय। तो प्रभुपाद को विक्ट्री, प्रभुपाद कहने लगे वी विन द वॉर। तो इस प्रकार प्रभुपाद के सामने ऐसे कई जहरीले सर्प आए, लेकिन सारे सर्प को भगवान ने केवल छोटे ही मार से उन्हें भगा दिया। तो ऐसे भगवान के भक्त की जो भक्ति वो अग्नि तुल्य है, और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति भले कितना सर्प जहरीला हो लेकिन उसके कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भगवान असुरों का उद्धार करने के लिए वो इस प्रकार प्रकट होते हैं। अब ऐसे नहीं कि भगवान असुरों को वार्निंग नहीं देते, वार्निंग भी देते हैं कई बार, जैसे रावण को उन्होंने कई बार, उन्होंने भगवान ने चुनौती दिया कि देखो अभी भी समय संभल जाओ, लेकिन रावण जो था वो 10 सिर वाला रावण, वो 10,000 उन्होंने साल उन्होंने तपस्या किया, हर एक 1,000 साल तपस्या करने के बाद उनका जो 10 मुंडी था, एक एक मुंडी वो अर्पण करता था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, करते करते जब लास्ट मुंडी बचा था तो उसको भी अर्पण करने गया, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। इन्होंने कहा मैं किसी गंधर्वों से, देवताओं से नहीं मरूं। अब इन्होंने 2 जन से मांगना भूल गया, 2 जन से मांगा ही नहीं, वो है मनुष्य और पशु, क्योंकि वो सोचता है मनुष्य पशु मेरे सामने मच्छर है, ये लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन उसी से उनका मृत्यु हुआ, जो कि वानर पशु प्रभु रामचंद्र जी मनुष्य लिंगम मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। तो वैसे यहां पर वो इन दोनों को बात छोड़कर बाकी सब उन्होंने वर ले लिया, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यहां से रावण ये बड़े गर्वित होकर कुबेर के पास गए, कुबेर जो कि श्रीलंका, जो कि जो रावण की लंका, तो वही रावण की लंका में वो वहां पर रहते थे। तो उन्होंने उस लंका को, लंका के यहाँ से कुबेर को भगाकर उनके पुष्पक विमान को चुरा लिया और उस पुष्पक विमान को लेकर वो विचरण करते हुए हिमालय की ओर आए। तो वहां पर जब आए तो उन्होंने देखा कि बड़ा हिमालय है, तो उसमें जब ऊपर की ओर जा रहा है तो लेकिन एकाएक उनका गति रुक गया। तो रावण सोचने लगा कि मेरी गति कैसे रुक गई, किसने रोक दिया। तब पता लगा वहां पर नंदीश्वर आ गए और नंदीश्वर कहने लगे इससे ऊपर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे महादेव विश्राम कर रहे हैं, आप यहाँ पर डिस्टर्ब परेशान मत करो, चले जाओ। नहीं नहीं मुझे जाना है। तुम कौन हो, जाओ जाकर कहो कि रावण आ रहा है। तो बड़ा क्रोधित हो गया नंदीश्वर और इस क्रोध को देखकर रावण जोर से हंस पड़ा। तो नंदीश्वर कहे, उन्होंने श्राप दे दिया, मुझे तुम देखकर मैं बंदर हूं करके ऐसे सोच के तुम हंस रहे हो, तुम्हारी भी मृत्यु बंदरों से होगी, ये मेरा श्राप है, ऐसे कह के चले गए। लेकिन वो ऊपर तो नहीं जा पा रहे थे रावण, तो रावण ने क्या सोचा, इसी को उठा लूंगा मैं। अब रावण ने अपना दोनों बल लगाया हाथों से उनको उठाने के लिए, और जब पार्वती डगमगाने लगी तो पार्वती ने कहा कुछ करो क्या हो रहा है, तो तब शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, वो रावण का काम चल रहा है नीचे। और यहाँ पर शिवजी ने अपने केवल अंगूठे से ही उन्होंने हिमालय को दबा दिया और जिस कारण से उनका दोनों हाथ नीचे दब गया और चिल्लाने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। अब रावण इतने जोर से चिल्लाने लगा कि देवतागण अपना कान पकड़ने लगे, अरे हाहाकार मच गया, क्योंकि उस आवाज को सुन के देवतागण भी डर गए। तो किसी हितेशी ने आकर उसको कहा कि अरे इतना चिल्लाते क्यों हो, अरे चिल्लाना है तो शिव जी को आ रहा था, ओम नमः शिवाय चिल्लाओ तो वो कुछ कर सकते हैं, उसके कारण ही तुम्हारा हाथ दबा है। बोला ऐसा, तो वो चिल्ला कहने लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे शिव जी का, रावण जो था शिव जी का ऐसे भक्त बन गया। और अब जब रावण शिव जी का इस प्रकार भक्त बन गया, शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो कहा कि जो कुछ ब्रह्मा जी ने दिया मुझे लगता है सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी, जो कुछ उसके आशीर्वाद में कुछ कमी है तो वो आप पूरा दे दो कि मैं किसी से नहीं मरूं। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब शिव जी ने भी उसे यहाँ पर वर दे दिया, ब्रह्मा जी ने भी वर दे दिया कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वही रावण, उसका तो अंतिम निशाना तो पड़ा ही रामचंद्र जी का बाण। और वैसे ही जब रावण जब थे तब उस समय उनको कई बार उनको चुनौती देने के लिए गए थे, तो पहले हनुमान गए, तो हनुमान ने लॉजिकली उसे समझाया। फिर एक समय जब सुग्रीव जब पर्वत के ऊपर खड़े रहकर वो नजारा देख रहे थे कि कैसे रावण की लंका के ऊपर कैसे आक्रमण करना है, जब देख रहे थे उसी पर्वत से उन्होंने देख लिया कि रावण गेट के इधर ही खड़ा है, तो सीधा छलांग लगाए रावण की ओर और दो तीन मुष्टी मारने लगे उनके छाती में। तो रावण ने देखा अरे एकाएक बंदर यहाँ पर कैसे आ गया। अब यहाँ पर रावण भी युद्ध किया, लेकिन रावण का युद्ध उनके सामने नहीं चला। तब रावण अपनी मायावी जाल को चलाने लगा, जिसको देखते ही सुग्रीव वापस छलांग लगा के आ गए। तब प्रभु रामचंद्र जी कहने लगे अगर इस समय तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पहला तो उस रावण को मारता, विभीषण को रावण की लंका देता और भरत को अयोध्या का राजा बनाकर मैं भी यहां से चला जाता, पूरा रामायण शॉर्ट स्टोरी हो जाता है। तो हे सुग्रीव मेरे बिना आज्ञा से तू चले गए, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ होता तो मैं इसको सह नहीं पाता था। और ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा आतुर रहते। तब उन्होंने देखा कि रावण, रामचंद्र जी ने सोचा कि चलो रावण को और भी मौका दिया जाए, तो उन्होंने अंगद को भेजा, जाओ अंगद तुम जाकर समझाओ। तो दूसरा हो गया, अब तीसरा अंगद आए। अब तीसरा अंगत आए तो तीसरा अंगत ने कहा कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, संदेश ये लाया हूँ कि आप तुरंत ही सीता को छोड़ दो तो प्रभु रामचंद्र जी तुम्हें क्षमा कर देंगे, अगर नहीं करोगे तो आप अच्छी तरह लंका पे एक बार अंतिम दर्शन कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम दर्शन हो गया, उसके बाद नहीं हो गया। तो रावण को बड़ा क्रोध आया, रावण ने कई असुरों को कहा पकड़ लो, तो तीन जब बड़े इष्ट पुष्ट असुर लोग आकर उनको पकड़ लिया अंगद को। अब अंगद उनको सबको लेकर उड़कर छलांग लगाए सीधे जो उनके जो महल का जो कुंभ था उस कुंभ के ऊपर छलांग लगाए और वहां से धकेल के सबको गिरा दिया और उसके कुंभ को तोड़कर वहां से अंगद वापस आ गया। फिर भी राम को आकर कहने लगा वो सुन नहीं रहा, वो सुधरेगा नहीं। तो रामचंद्र जी ने देखा कि कई बार उनको यहां तक कि मंडोदरी के द्वारा भी समझाया लेकिन फिर भी रावण नहीं समझा। फिर इंद्रजीत के द्वारा समझाया तो इंद्रजीत भी जानते थे कि मेरी मृत्यु होने वाली है। इंद्रजीत जब जा रहे थे युद्ध के लिए उसी समय इंद्रजीत ने कहा देखो अपनी पत्नी को कहने लगा कि देखो ये मेरा अंतिम मेरा आरती तुम उतार लो फिर दोबारा नहीं कर पाओगे। और ऐसे कहकर वो गए थे। कुंभ ने भी कहा हे रावण मेरी बात मान लो, हम जो शांति से यहां पर रह रहे उसी में तुम सुखी रहो, राम बहुत बलशाली है। कुंभकर्ण को भी पता था कि वो मरने वाले हैं और उन्होंने भी कह दिया था लेकिन फिर भी रावण के सर पर मृत्यु के काल के चक्र मंडरा रहे थे। ऐसे तमाम चुनौती सुनने के बाद भी उन्होंने सीता को वापस नहीं दिया, तब जाकर राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा के साथ साथ असुरों को भी उद्धार करते हैं कई प्रकार से उन्हें चुनौती देने के बाद भी। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, जब कृष्ण किसी भक्त की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी शक्ति इतना कोई भी बयान जैसे हमने इसमें इस प्रसंग में दो जन का उदाहरण लिया, एक है दुर्वासा मुनि दूसरा है रावण। तो दुर्वासा मुनि इतने बड़े बलशाली थे जो कि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र को उठा भी लिए थे लेकिन जब कृष्ण अम्बरीश महाराज की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसे कुछ नहीं कर पाया। अब यहां पर रावण जो कि ब्रह्मा और रावण से ब्रह्मा और शिव जी से उन्होंने वर प्राप्त कर लिया था लेकिन ब्रह्मा शिव से वर प्राप्त करने के बाद भी जब कृष्ण ने अगर रावण को जब राम ने जब रावण को मारने का जब निश्चय कर लिया तो कोई भी उसे रक्षा नहीं कर सकता और रावण का मृत्यु निश्चित था। तो वैसे ही भगवान जो सर्वशक्तिमान है वैसे सर्वशक्तिमान भगवान के पास यहां पर अब ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर जाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो निको थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।